क्वेश्चन ये है कि हुकूमत चार तरह की होती है अमूमन, जो है आमरियत, मलूकियत, खिलाफत और जमहूरियत। आमरियत और मलूकियत तो इस्लाम में वैसे ही मना है। जमहूरियत और खिलाफत, इन दोनों में बड़ा क्लोज रिलेशन है। जमहूरियत में अगर वोटर जो है उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए, उसका मेंटल लेवल हो, वो सोच समझ सकता हो, अच्छा जो हुक्मरान है वो इलेक्ट कर सकता हो, उसे पता हो कि ये हुक्मरान, इसकी पॉलिसी अच्छी है, इसकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल से वही जमहूरियत जो है वो खिलाफत की तरह ही की हो जाएगी।
आप ये कह रहे हैं कि जमहूरियत ही को रहने दें, लेकिन लेकिन जो हमारे वोटर हैं उनको कुछ एजुकेट कर दिया जाए,
एजुकेट कर दिया जाए, या एजुकेट कर दिया जाए, या फिर क्राइटेरिया वोटर का,
क्राइटेरिया ऐसा डिफाइन, जावेद साहब क्राइटेरिया डिफाइन किया जा सकता है कि कोई ऐसा कि ये वोट दे सकता है, ये अहल होगा या ना अहल होगा वोट देने के?
कुरान मजीद ने तो नहीं किया,
कुरान मजीद ने तो नहीं कहा।
देखिए सूरह शूरा में जब मौका आ गया कि अब मुसलमानों का अपना इज्तिमाई नज्म कायम करना है, तो कुरान मजीद ने क्या कहा? उसने ये कहा कि मुसलमान इस वक्त अपने दीन का शऊर रखते हैं, उनके अंदर यह औसाफ है, अब उनको अपना नज्म इज्तिमाई कायम करना है, तो अमरोहम शूरा बैनहुम, यानी अमरोहम शूरा बैनहुम, कोई शरायत नहीं आयत की। ये जो मुसलमान जैसे हैं, जो इनके औसाफ हैं, ये सारे के सारे मुसलमान अपने बाहमी मशवरे से अपना नज्म कायम करेंगे। मैंने अभी एक प्रोग्राम में, आपको याद होगा, बड़ी तफसीली बहस करके ये बताया था कि खुद सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के इंतखाब पर तबसरा करते हुए बुखारी की रवायत के मुताबिक जो तफसीलात बयान की हैं, वो तफसीलात के बयान करने का तो ये मौका नहीं, बहुत दिलचस्प है।
सही।
उसके खात्मे पर क्या कहा है कि देखो, कोई शख्स उस बुनियादी उसूल को चैलेंज करने की कोशिश ना करे कि ला खिलाफत इल्ला मशवरत मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के यहाँ हुकूमत उनकी राय के खिलाफ नहीं कायम हो सकती। तो मैं और आप कौन होते हैं कि किसी आदमी के बारे में ये तय करें कि वह है या नहीं? खुदा ने जिनको शऊर दिया है उनको हक भी दिया है। अच्छा, आप जिस वक्त जो ख्वाब हम देखते हैं, ये ख्वाब अरिस्तू और अफलातून के जमाने से देखे जा रहे हैं, और अरिस्टोक्रेसी की बेशुमार शक्लें हैं जिनको वजूद में लाने की कोशिश की गई। यूनानी फलसफियों को इस पर बड़ा इबराम था कि फलसफियों के हाथ में हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन दुनिया ने बहुत सबक सीखा है और कुरान मजीद ने इसी की तालीम दी। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी उसूल पर अपना नज़म कायम किया कि तमाम मुसलमान बिल्कुल बराबर हैं। अच्छा, इसी तरीके से
इसमें जो है वो
पाकिस्तान के शहरी, दो में से एक काम कीजिए ना, या ऊपर दरख्वास्त भेजिए अल्लाह ताला के, और उनसे कहिए कि वो अपनी तरफ से हुक्मरान का तकर्रुम कर दे, खालिक है, उनको हक हासिल है, उसके बाद अवाम है जिनको मुंतखब करना है। तो मैं और आप कौन होते हैं? मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाऊं। एक जमाने में पाकिस्तान में एक जस्टिस कैकाउस साहब होते थे, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी हमारे यहाँ हाई कोर्ट में। उस जमाने में जस्टिस जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल के जो फर्जंद हैं, वो गालिबन चीफ जस्टिस थे या उनकी अदालत में ये मुकदमा था। बहुत देर तक उसकी समाअत होती रही, तो वो बार बार ये कहते थे कि देखिए, मुत्तकी और परहेजगार लोग जो है ना, उनको हमारा हुक्मरान होना चाहिए। जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने उनसे पूछा एक मौके के ऊपर कि जी वो कहाँ से आएंगे, यानी उनके इंतखाब का क्या तरीका होगा? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर आप किसी मुत्तकी को नामजद कर दें मुल्क।
अच्छा,
तो आखिर में फिर ये बातें रह जाती हैं। देखिए, ये आवाम का हक है, आमतुल नास से आप बेहतर राय लेने चाहती हैं तो उनको एजुकेट करें।
सही है, एजुकेट करें,
यानी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है। इससे आगे बढ़कर जब आप ये कहेंगे कि फलां को राय देने का हक है और फलां को नहीं है, तो इसके लिए आसमान का कोई सहीफा उतरना चाहिए, ये हक आपको हासिल ही नहीं है।